अध्याय 14 भारतीय जीवन मूल्य। भारतीय जीवन मूल्यों को तीन दृष्टियों से समझ सकते हैं। ये तीनों दृष्टियां निम्नांकित हैं: एक दार्शनिक दृष्टि अथवा आधार, दो सामाजिक चेतना, तीन वैयक्तिक चरित्र और आचरण। भारतीयों ने तप, त्याग, सेवा और साधना के बल पर जो निष्कर्ष निकाला वही यहाँ का दार्शनिक आधार है। यहाँ का जीवन, धर्म, साहित्य, कला, रीति रिवाज और परंपराएं सभी भारतीय दर्शन में आधार पर विकसित हुए हैं। इस तत्व से यहाँ का संपूर्ण जीवन समृद्ध हुआ है। यहाँ के जीवन का आधार है वह अव्यक्त सत्ता, जिसमें कि हमारा अगाध विश्वास है। इस सत्ता के अनेक रूप और नाम है: एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। इसके अनंत नामों इसे अनंत नामों से पुकारा जाता है। भारतीय मूल्यों के अनुसार यह एक शक्ति, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सर्वकर्ता और सर्वनियंता है। यह इंद्रियातीत है, अवांग मनुष्यो गोचरस गोचरम। यह बाड़ी और मन से परे है। इसका बोध कैसे हो, संतों, मुनियों और ऋषियों ने कहा, वह अनुभूति गम्य है। यही कारण है कि भारतीय मूल्यों के अनुसार महापुरुष वह नहीं जो धनवान, बुद्धिमान किसी भी भौतिक सुख से समृद्ध हो। वास्तविक सुखी वही है जो ब्रह्मानंद का आनंद प्राप्त कर चुका है। ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई सत्ता अवश्य है, वही अव्यक्त सत्ता ईश्वर है, जिसे भारतीय विश्वास कहते हैं। ब्रह्मांड को चलाने का नियम इसे प्राकृतिक नियम कहते हैं, जो अटल है इसे ऋतु कहते हैं। जड़ चेतना इसी से बंधे है। सूरज, चांद, सितारे, रात दिन, मौसम में परिवर्तन, सर्दी गर्मी, पेड़ पौधे का उगना बढ़ना, बचपन, युवा, बुढ़ापा, मरना जीना, सभी उसी अटल नियम से बंधे हैं। प्रकृति के इन नियमों में भारतीयों का विश्वास है, इसलिए भारतीयों ने आरंभ से ही जीवेम शरदः शतम् यह प्रार्थना करते आए हैं। उन्होंने प्रकृति के साथ संतुलन बैठाने का प्रयास किया, प्रकृति पर विजय पाने का नहीं। यही कारण है कि भारत के लोग सदा से प्रकृति का आदर करते आए हैं। उन्होंने शरीर के नष्ट न होने की न कभी आकांक्षा की, न उसका प्रयास किया, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलना उन्होंने अपने जीवन का मूल्य समझा। भारतीय इस बात में विश्वास रखते हैं कि प्रकृति के नियमों को तोड़कर कोई सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य उसी ब्रह्मा का एक अंश है, वह उसी से पैदा हुआ है और अंत में उसी में विलीन हो जाएगा। भारतीय मान्यता है कि यह जीव उसी दिव्य का अंश है, अपने दिव्यता को पूर्णत्व में विकसित करके उसी दिव्य में परिणित हो सकता है। यही भारतीय जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। भारतीय जीवन और पाश्चात्य मूल्यों में बड़ा अंतर है। हमारा जीवन मूल्य आध्यात्मिक और भौतिक, उनका भौतिकवादी है। भारतीयों का लक्ष्य भौतिक प्रगति नहीं, भौतिक प्रगति तो भारतीय जीवन की एक उपलब्धि है, प्रगति नहीं। हमारी इस आध्यात्मिकता की आधार भूमि धर्म है। भारतीय जीवन मूल्यों में धर्म का सर्वोच्च स्थान है। धर्म विवेक पर आधारित वह नियामक शक्ति है जो हर मनुष्य को उसकी स्थिति के अनुरूप कर्तव्य का बोध कराकर उसी के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरणा देती है। शास्त्रकारों ने इसे अभ्युदय कहा है, अर्थात उच्चतर जीवन यापन करने का मार्ग। संपूर्ण भारतीय जीवन मूल्यों की आधार भूमि यही धर्म है। हर कार्य के लिए नियम बने हैं, इन्हीं को हम जीवन मूल्य कहते हैं। इन मूल्यों का आधार यहाँ की मान्यताओं में निहित है, जिनका स्रोत भारत की दार्शनिक दृष्टि से है। हमारे देश में धर्म का दिव्य प्रसाद दर्शन की नींव पट्टिका है। इसका विस्तार जीवन मूल्यों रूपी आयाम में मिलता है। इसी के माध्यम से हम सफल और सार्थक जीवन व्यतीत करते हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म धर्म के सोपान हैं। इसी के द्वारा मनुष्य अपनी रुचि, प्रकृति और सुविधा के अनुसार जीवन में अपनाता है। धर्म के सोपानों का लक्ष्य मोक्ष है, जैसे मोक्ष के भी अनेक रूप और व्याख्याएं हैं। सांसारिक जीवन से निवृत्ति, लौकिक जीवन से मुक्ति, ब्रह्म में से एकता और उसी में विलीन होना आदि मोक्ष के रूप हैं। इसी कारण भारतीय जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को स्वीकार किया गया है। धर्म प्रमुख है, सबका आधार है, क्योंकि बिना धर्म के शेष तीनों अर्थ व्यर्थ तथा रूखे हैं। अर्थ और काम की विवेक पर आधारित औचित्य परायण नियामक शक्ति धर्म है। इस प्रकार अर्थ और काम जहाँ जीवन के प्रवृत्ति परक मूल्य हैं, वहाँ धर्म और मोक्ष निवृत्ति परक मूल्य। जीवन के मूल्यों का मेरुदंड निवृत्ति परक प्रवृत्ति है। पूरा जीवन प्रवृत्ति परक है, उसकी दिशा और परिणति निवृत्ति। जैविक आवश्यकताओं के लिए धन आवश्यक है, अतः आजीविका के द्वारा इसे प्राप्त करना है। अधिक धन कमाओ पर साधन उनका साधन उचित होना चाहिए। अनुचित साधनों से धन कमाया भारतीय जीवन मूल्यों के खिलाफ है। इसी प्रकार काम है, इसकी पूर्ति अनुचित साधनों से नहीं करनी चाहिए। उपनिषद में इसे एक प्रकार से समझाया गया है, जीवन रूपी रथ के अर्थ को काम इंद्रियां और शरीर दो घोड़े हैं, इनकी लगाम धर्म रूपी संयमी सारथी बुद्धि के हाथ में है। धर्म जब तक इसे नियंत्रित किए रहता है तब तक यह मोक्ष के मार्ग पर चलते रहते हैं। जब नियंत्रण बिगड़ जाता है तो जीवन बिखर जाता है। सभी भारतीय जीवन मूल्यों, जीवन दर्शन, जीवन शैली, जीवन साधना, जीवन पथ इसके अच्छे ढंग से नहीं समझाया जा सकता। कर्म सिद्धांत की महत्ता। कर्म सिद्धांत भारतीय जीवन मूल्यों की महत्वपूर्ण कड़ी है। हर आदमी अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है, भले ही उसका बोध न हो। कर्मों का फल तीन प्रकार का होता है, क्रियमाण, संचित प्रारब्ध। एक क्रियमाण कर्म, कर्म करते ही तुरंत फल मिल जाए, वह क्रियमाण कर्म कहा जाता है। दो, संचित कर्म, श्रम द्वारा थोड़ा थोड़ा जुटाते गए, कुछ बाद वह एक बड़ी धनराशि हो गया। काफी समय विद्या अध्ययन किया तो उस विषय के विशेष ज्ञाता हो गए, विद्या संचित हो गई। तीन, प्रारब्ध। प्रारब्ध वे कर्म फल हैं जो क्रियामण और संचित से आगे बढ़कर शेष रह जाते हैं, केवल इसी जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी साथ रहते हैं। इन कर्म फलों का ज्ञान हमें नहीं होता, हम कहने लगते हैं कि हमें अपने कर्म के फल की प्राप्ति नहीं हुई। यदि इस पर गहराई के साथ विचार करते हैं तो अपनी अज्ञानता ही समझ में आती है। कर्म का सिद्धांत हर व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति को विश्वास रहता है कि कर्म का फल मिलेगा अवश्य। अच्छे मनुष्य के निर्माण में यह नियम भी कार्य करता है। आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज के ढांचे का वह आधार है जिसके अभाव में समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसे तो मानव जीवन का एक मूल्य ही कह सकते हैं। एक आरंभ के 25 वर्ष वह इन बातों का विकास में लगाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा, उक्त सबका परिचय और स्वास्थ्य विकास, आत्मज्ञान के लिए शास्त्रों का ज्ञान, आगे धनार्जन के लिए विद्या और कौशल की प्राप्ति, मानसिक शक्तियों का बोध, संयम और नियम का ज्ञान, विवेक का जागरण, गुरुजनों का सानिध्य, जिज्ञासा का विकास और उनका समाधान, सामाजिक शिष्टाचार और वैयक्तिक चारित्रिक गरिमा प्राप्त करने का उपयुक्त समय। इस समय अर्जित मूल्य के आधार पर जीवन निर्मित होता है। पहले गुरुकुलों में रहकर विद्यार्थी इन गुणों को अर्जित करते थे। इस ब्रह्मचर्य आश्रम में जीवन के सर्वांगीण विकास को ही उपयुक्त जीवन मूल्य माना गया। गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष का समय गृहस्थ आश्रम है। यह जीवन का महत्वपूर्ण अवसर माना गया है। इसका महत्व इस प्रकार है, मनुष्य ऐहिक प्रवृत्तियों का उपभोग करता था, उपयोग और शमन भी कर सकता है। दो, धर्म पूर्वक अर्जित अर्थ और काम इसकी आधार भूमि है। तीसरा अवस्था वानप्रस्थ है, इसे 50 से 75 वर्ष माना गया है। इस अवस्था में पारिवारिक प्रेम, उदात्तीकरण करने, व्यापक समाज को अपने समाज में अभिसिंचित किया जाता है। व्यक्ति लोक चेतना, कल्याण, दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न किया जाता था। चित्त उदात्त हो जाता है, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर गमन होता है। लोक कल्याण और आत्मिक उन्नयन दोनों ही दृष्टियों से इन मूल्यों का विकास मानव जीवन को और गरिमामय बना देता है। संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम जीवन का अंतिम आश्रम है। यहाँ लोक का त्याग करके अलौकिक सत्ता से रागात्मक रामात्मक संबंध स्थापित करते हुए उसे ऐक के विधान सतत प्रयत्न करते हैं। लौकिक ऐषणाओं, पुत्रेषण, अर्थेषण, यशेषण और ऊपर उठकर मात्र लोकेषण में ही निमग्न रहता है। यश मानव की मूल प्रवृत्ति है, लेकिन उससे भी ऊपर उठे बिना लोकेषण से संबंध नहीं टूट सकता। कितना कठिन परंतु सरल सीधा मार्ग है प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर बढ़ चलने का। आरंभ से ही जब व्यक्ति निवृत्ति पराय प्रवृत्ति के मूल्य को अपना लेता है तो उसके लिए यह मार्ग सहज ही उपलब्ध हो जाता है। भारत का अनपढ़ ग्रामीण परिश्रम के बाद भी भूखा रह जाता है और मोक्ष की कामना तो नहीं छोड़ सकता। इससे बढ़कर जीवन का और क्या आध्यात्मिक मूल्य हो सकता है। वर्ण व्यवस्था का मूल्य, मनुष्य की रुचि और प्रवृत्ति अनेक प्रकार की होती है। भिन्न रुचि लोकह, सबको एक ही प्रकार कार्य दिया जाए तो संभव नहीं हो सकता। भारतीय मानव वर्गीकरण में प्रकृति से मनुष्य को तीन भागों में विभाजित किया गया है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। गीताकार ने जन समाज का वर्गीकरण गुण कर्म स्वभाव वश इस चेतना के अनुसार बुद्धिजीवी ब्राह्मण योद्धा रक्षक राजा धनुपार्जक और सेठक श्रमिक इन चारों वर्गों को समाज को बांटकर उनके स्वभाव सामर्थ्य योग्यता और कौशल के अनुरूप कार्य सौंपे गए। उन कार्यों को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करना ही उनका जीवन मूल्य है। सामाजिक विकृतियों के कारण बहुत से वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म को स्वीकार कर लिया गया। इससे समाज में थोड़ी विश्रृंखलता भी आई, लेकिन उसके मूल्य के मूल्य रूप को समझ कर चलते हुए जिन जीवन मूल्यों का रक्षण एवं समर्थन होता है वे अविस्मरणीय है। नारियों को श्रेष्ठ स्थान, नारियों को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। ऐसा कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं या निवास करते हैं। ऐसा कहकर प्राचीन काल से ही नारी को बहुत गौरव दिया गया। दक्षिण में आज भी विवाहित नारी को माँ कहकर संबोधित किया जाता है। यह सब भारतीय मूल्यों का रूपांतर है। संस्कारों को महत्व, भारतीय समाज में संस्कारों को विशेष महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ जीवन मूल्यों के आधार की ही भांति 16 संस्कारों में से कुछ प्रवृत्ति परायण और कुछ निवृत्ति परायण है। यह जन्म उपनयन विवाह आदि उल्लासमय है और अंत्येष्टि संस्कार भी मानव को जीवन के अंतिम सत्य का परिचय देने का महत्वपूर्ण है। लोग एक दूसरे के दुख सुख में सम्मिलित होते हैं, यह मूल्य क्या कम महत्व रखता है। साध्य को महत्व, भारतीय जीवन में साध्य को विशेष महत्व प्रदान किया है। साधनों का महत्व कम भी नहीं है, अनुचित साधनों का उचित साध्य को प्राप्ति हो ही नहीं सकती, अतः साधनों का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करना यहाँ की विशेष मूल्य है। भारतीय मूल्यों में बाह्य की अपेक्षा आंतरिक भाव का अधिक महत्व है। वस्त्रों को स्वच्छ होना अच्छा, लेकिन उनकी अपेक्षा उन्हें धारण करने वाला अधिक महत्वपूर्ण है। विवेकानंद ने अमेरिका के लोगों से कहा, आपके देश में दर्जी किसी व्यक्ति को सभ्य और सुसंस्कृति बनाता है, लेकिन जिस देश से मैं आया हूँ वहाँ उदात्त चरित्र ही किसी व्यक्ति को सुसंस्कृति बनाता है। यहाँ बाह्य की अपेक्षा आंतरिक भाव का मूल्य अधिक है। संतुलन और समन्वय भारतीय जीवन की एक और विशेषता है। आदर्श और यथार्थ का संतुलन, बाह्य और अंतर का संतुलन, बुद्धि और हृदय का संतुलन, धर्म और कर्म का संतुलन, मोक्ष और त्याग का संतुलन, साहित्य कर्तव्य और अधिकार का संतुलन, परिवार और समाज संतुलन और कला का संतुलन, अर्थ और काम का संतुलन, मानव और प्रकृति का संतुलन, इस प्रकार संतुलन का विशेष महत्व है। इस औचित्य परक संतुलन से ही यहाँ का संपूर्ण जीवन अनुप्राणित होता है। भारतीय जीवन में कर्म के सिद्धांत की प्रधानता रही है। यहाँ सभी यही जानते हैं कर्म करना उनका प्रथम कर्तव्य है। आज ही नहीं तो कल फल अवश्य प्राप्त होगा। उसे स्मरण दिलाया गया है कि वह फल की आकांक्षा न करे। यह मूल्य संतोष देते हुए अनावश्यक निराशा से बचाता है। भारतीय समाज और जिन मूल्यों का प्रश्रय देना है उनका संक्षिप्त में उल्लेख आगे है। भारतीय गौ और ब्राह्मण को आदर देता है, उनकी पूजा करता है। धर्म ग्रंथों में उनका विश्वास हो अथवा नहीं, लेकिन उन्हें आदर अवश्य दिया जाता है। माता पिता वृद्ध गुरु आदि को सम्मान दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। सेवा आर्थिक और भौतिक हो अथवा नहीं, लेकिन मानसिक भाव परायण सेवा अवश्य होनी चाहिए। यही मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण से उऋण होने का साधन है। इसलिए संपूर्ण भारतीय समाज और ब्रह्मांड में इनका ऊंचा स्थान है। भारतीय समाज के लिए ग्रहणीय आचरण और मूल्य, शिक्षियों को विनम्र सेवा परायण जिज्ञासु बने रहना चाहिए और विद्यालय को तपस्या समझकर करें। सुख की कल्पना भी उन्हें नहीं करनी चाहिए। ज्ञान ही नहीं गुरु के आचार भी उन्हें अर्जित करना चाहिए। यही कारण है कि भारतीय समाज में विद्वान की अपेक्षा चरित्रवान व्यक्ति अधिक सम्मान होता है। सदाचार गुण और वातावरण को यहाँ अधिक स्थान दिया गया है। सभी मिलकर ऐसे अच्छे वातावरण का निर्माण करते हैं जिनसे अनायास ही मनुष्य के सद वृत्तियां उभर आती हैं। सदाचार के द्वारा वह अच्छे चरित्र को विकसित करता है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्रेष्ठकर है, उस समय के शांत वातावरण में सात्विक भावों का जागरण होता है। भारत में आध्यात्मिकता का स्थान अधिक है, संभवतः इसी कारण भारतीय ब्रह्म मुहूर्त में वह ध्यान उपासना आदि करता है। विकास के लिए शरीर का स्वस्थ रहकर रहना आवश्यक है। वह स्नान ध्यान व्यायाम के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखता है। वृद्धों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। उनके प्रति सेवा भावना व्यक्त करता है, उनमें विनय की भावना जगाती है। सदा सादा भोजन ग्रहण करता है। ऐसा सात्विक भोजन शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। अपवित्र भोजन मन को स्वस्थ नहीं रख सकता, अतः वह भारतीयों को ग्राह्य नहीं। अपवित्र लोगों को भोजन पवित्र विचार पैदा नहीं कर सकता। अतिथि सत्कार का भारतीय जीवन में बहुत महत्व है। अतिथि के प्रति श्रद्धा भावना होनी चाहिए। भारतीय मूल्यों के अनुसार उसी घर में जाना चाहिए जहां आदर हो। रोगी और वृद्धों की सेवा करना मानव धर्म है। व्यक्ति में विनय, नम्रता और निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ दान देना चाहिए। प्रचारित दान अहम और स्वार्थ पैदा करता है। वस्त्र साफ सुथरा हो, थोड़ा बोले, बिना बुलाए न बोले, मधुर बोले, कड़वी बात मीठे ढंग से बोले, रात्रि को देर तक घर से बाहर न रहे, जल्दी सोना, प्रातः उठकर उठना श्रेयस्कर है। पर्वत नदियां धार्मिक ग्रंथों का आदर करें। काशी प्रयाग अयोध्या मथुरा वेद पुराण पूज्य है। मातृभूमि को गौरवान्वित करना चाहिए। इन्हें ही प्रमुख मूल्य कहते हैं जिनसे कि भारतीय समाज परिचालित है। सबसे मुख्य वैयक्तिक उदात्त चरित्र हैं आचार प्रभो धर्म। धर्म आचरण प्रधान है। सदाचरण व्यवहार से व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है। एक ओर जहां उक्त मूल्य हैं उन्हें ग्रहण करने वाला सच्चा भारतीय कहला सकता है, वहीं उसका वैयक्तिक आचरण भी सदाचार से की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनु ने धर्म के दस लक्षण बताए हैं। ये हैं धैर्य, क्षमा, संयम, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध। इन सब से व्यक्ति उदात्त बनता है। गीताकार ने 27 दैवी संपदाओं की बात की है। ये व्यक्ति सदाचार के गुण कहे जा सकते हैं। ऐसी व्यक्ति ही आत्मा परिचय पाने में सफल होता है। आत्मनम सिद्धि, अपने को जानो, ऐसा कहकर मनीषियों ने स्पष्ट कर दिया कि उदात्त बनने के प्रयत्न में मानव का प्रथम कार्य अपनी सभी शक्तियों की आत्म प्रकृति, प्रवृत्ति, रुचि, सीमा, शक्ति और सामर्थ्य का बोध प्राप्त करें। 9. मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्ठवत, अर्थात दूसरे की स्त्रियों में मातृभाव और दूसरे के धर्म को मिट्टी के ढेले के समान समझे। ऐसा व्यक्ति अंतर मन की ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सकेगा, आंतरिक नैतिक शक्ति से उसका अनुकरण कर सकेगा। यही सबसे बड़ा भारतीय जीवन मूल्य है। वही ईश्वर के साथ ऐक्य स्थापित कर सकेगा। इस प्रकार भारतीय जीवन मूल्यों में यह स्पष्ट कर दिया गया है, सद्विचार परायण चेतना ही वह आधार भूमि है जिससे मानव सदाचार परायण जीवन में प्रवृत्त होगा और सतत ऐसा जीवन बिताने पर वह धार्मिक चेतना में लग सकेगा और इसी की चरम परिणति होगी आध्यात्मिकता। यही भारतीय जीवन मूल्यों की चरम अवस्था है। इन्हीं के कारण व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर उठकर भारतीय मनीषियों ने कामना की है, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काश्चिद् दुःखः भार भवेत्।